लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे सृष्टि के संसाधनों के प्रति सम्मान और सुरक्षा हेतु प्रार्थना करते हैं, ताकि प्राकृतिक संसाधनों को लूटा नहीं जाए बल्कि न्यायपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से साझा किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवार ये आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारी आमदर्शन समारोह के अवसर पर वेटिकन के संत दामोस प्रांगण में उपस्थित विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. Per uscire da una pandemia occorre curarsi e curarci a vicenda.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। एक महामारी पर विजयी होना हमें एक दूसरे की देखरेख और चिंता करने की मांग करती है। हमें उन लोगों की सहायता करने की जरूरत है जो अधिक कमजोर, बीमार और बुढ़ापे से लाचार हैं। हम उन्हें अपने से अलग कर देते, उनका परित्याग करते हैं, जो अपने में खराब बात है। मानव के रूप में एक दूसरे की चिंता करना प्रकृति का एक स्वर्णिम नियम है, जो अपने में स्वास्थ्य और आशा लेकर आती है। हमें अपने सामान्य निवास पृथ्वी और उसके हर एक प्राणी की भी देखरेख करनी है। हमारा जीवन और स्वास्थ्य पारिस्थितिकी के संग संयुक्त है, जिसे ईश्वर ने सृजित करते हुए देखरेख की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। वास्तव में उनका शोषण करना हमारे लिए एक बड़ा अपराध है जो हमें रोगग्रस्त करता है, लेकिन इसकी रोकथाम की औषधि क्या है? संत पापा ने कहा कि इसके दुरुपयोग का सबसे उत्तम रोधक सामान्य निवास पर विचार मंथन करना है। यदि किसी ने इसके सुंदरता का बखान करना नहीं सीखा है, तो हमें आश्चर्य नहीं कि वह बिना संकोच के सभी चीजों को उपभोग की वस्तुएं स्वरूप उपयोग करेगा। फिर भी हमारा सामान्य निवास सृष्टि अपने में केवल संसाधन मात्र नहीं है। सभी जीव जंतु अपने में मूल्यवान हैं और हर एक जीवन अपने में ईश्वरीय अद्वितीय प्रज्ञा और अच्छाई के किरणों को बिखेरता है। इस दिव्य प्रकाश को हमें खोजने की जरूरत है, जिसके लिए हमें अपनी शांति में बने रहते हुए सुनने और उन पर विचार मंथन करने की आवश्यकता है। चिंतन के द्वारा भी हमारी आत्मा को चंगाई मिलती है। चिंतन के बिना हम असंतुलन के शिकार होते, जिसके फलस्वरूप हम मानव अपने को सृष्टि के केंद्र बिंदु में सभी प्राणियों के ऊपर समझते हैं। इस भांति हम धर्म ग्रंथ बाइबल की गलत व्याख्या करते हैं, जो हमें सृष्टि के दुरुपयोग की ओर अग्रसर करता है, जहां वह अपने में घुटन का अनुभव करती है। यह शोषण हमारे लिए पाप है। अपने में यह विश्वास करते हुए कि हम सृष्टि के केंद्र बिंदु में ईश्वर का स्थान लेते हैं, हम एकतामय ईश्वरीय योजना को नष्ट करते हैं। हम शोषक बन जाते और जीवन की देखरेख हेतु अपनी बुलाहट को भूल जाते हैं।
Certo, possiamo e dobbiamo lavorare la terra per vivere e svilupparci, ma il lavoro non è sinonimo di sfruttamento.
निश्चय ही हम पृथ्वी पर अपनी जीविका हेतु कार्य कर सकते हैं और हमें ऐसा करना है जिससे यह विकसित हो, लेकिन कार्य करने का अर्थ नष्ट करना नहीं है, वरन यह अपने में सेवा करने, देख रेख की भावना को सम्माहित करता है। यह हमारी प्रेरिताई है। हम अपने सामान्य निवास की देखरेख किए बिना, जो हमारा स्वागत करती है, भौतिक वस्तुओं में विकास नहीं कर सकते हैं। हमारी बेचारी धरती माता अपने विरुद्ध किए गए अन्याय के कारण शिकायत करती है। हमें अपने में परिवर्तन लाने की जरूरत है, जिससे हम सृष्टि की देखरेख कर सकें। संत पापा फ्रांसिस ने कहा, अतः चिंतन का यह आयाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसके फलस्वरूप हम पृथ्वी सृष्टि को ईश्वर से मिले उपहार स्वरूप देख सकें, न कि इसका दुरुपयोग अपने लाभ हेतु करें। जब हम चिंतन करते तो हम सृष्टि और दूसरों में उपयोगिता से बढ़कर अन्य दूसरी बड़ी चीजों को देखते हैं। चिंतन हमें उपयोगिता के दायरे से परे ले चलती है। चिंतन करने का अर्थ इसकी सुंदरता का दुरुपयोग करना नहीं, वरन इसे उपहार स्वरूप देखना है। यह हमें ईश्वर से मिले वस्तुओं के आंतरिक मूल्यों को देखने में मदद करती है। बहुत से धार्मिक गुरुओं ने हमें इसके बारे में शिक्षा दी है कि स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और सारे जीव जंतु हमें सृष्टिकर्ता ईश्वर के निकट लाते और हम अपने को सृष्टि से संयुक्त पाते हैं। लोयोला के संत इग्नासियस अपने आध्यात्मिक साधना के अंत में ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति हेतु चिंतन में हमें कहते हैं कि ईश्वर अपने श्रेष्ठ प्राणियों की ओर निहारते और आनंदित होते हैं। वे हमें सारे सृष्टि में ईश्वर की उपस्थिति को देखने, स्वतंत्रता में उनकी सुंदरता और कृपा को देखने तथा उनकी देखरेख करते हुए उन्हें प्रेम करने को कहते हैं। संत पापा ने कहा कि चिंतन हमें देखरेख के मनोभाव को अपनाने हेतु मदद करता है। जहां हम अपने को प्रकृति से तटस्थ नहीं रखते, वरन हम उसे अपने जीवन का अंग समझते हैं, यह हमें सृष्टि के नायक स्वरूप उसकी सेवा करने, न कि उसे नष्ट करने को प्रेरित करता है। जो इस तरह का चिंतन करते, वे न केवल प्रकृति की सुंदरता पर आश्चर्यचकित होते, बल्कि अपने को उस सुंदरता का एक अहम हिस्सा समझते हैं। वे उसकी देखरेख और उसकी रक्षा करते हैं। दूसरी बात जिसे हम ना भूलें, संत पापा ने कहा, जो प्रकृति और सृष्टि पर चिंतन करना नहीं जानते, वे लोगों की समृद्धि पर भी चिंतन करना नहीं जानते हैं। वे जो प्रकृति का दुरुपयोग करते हैं, लोगों का भी दुरुपयोग करते और उनके साथ दास स्वरूप व्यवहार करते हैं। यह एक सार्वभौमिक नियम है। यदि आप प्रकृति पर चिंतन करना नहीं जानते तो लोगों की सुंदरता पर भी चिंतन करना आपके लिए कठिन होगा। आप उन्हें भाई बहनों के रूप में नहीं देख पाएंगे।
Quizá contemplare più facilmente si metterà all'opera per cambiare ciò che produce degrado e danni alla salute.
वे जो चिंतन करना जानते हैं, वे अपने कार्यों में परिवर्तन लाते हुए धन की सुरक्षा हेतु कार्य करते हैं। वे नए उत्पादन और उपभोक्ता की आदतों का पाठ पढ़ाते और उसे प्रसारित करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था का एक नया स्वरूप तैयार हो सके, जिससे सामान्य निवास और लोगों का सम्मान हो। चिंतन करने वाले पर्यावरण के रक्षक बनते। वे अपने पैतृक ज्ञान की संस्कृति को नई तकनीकी ज्ञान से संयुक्त करने की खोज करते हैं, जिससे हमारे जीवन में निरंतरता बनी रहे। वास्तव में चिंतन और देखरेख ये दो मनोभाव हैं, जो मानव समाज और सृष्टि के साथ हमारी उचित तालमेल को व्यक्त करते हैं। बहुधा सृष्टि के संग हमारा संबंध शत्रुओं की तरह होता है, जहां हम अपने लाभ हेतु सृष्टि को नष्ट कर देते हैं। हम इस बात को ना भूलें कि हमें इसकी कीमत चुकानी होगी। स्पानी भाषा की एक कहावत को उद्धृत करते हुए संत पापा ने कहा, ईश्वर सदैव माफ करते, हम यदा कदा माफ करते, सृष्टि कभी माफ नहीं करती है। इसके साथ ही संत पापा ने अंटार्कटिका के दो वृहद हिमखंडों के प्रति अपनी चिंता जताई, जो अमुंडसेन सागर में गिरने वाले हैं, जो कई प्राकृतिक आपदाओं को लाने वाला है। उन्होंने इस संबंध में भ्रातृत्व के भाव पर जोर दिया, जो हमें सृष्टि की सुरक्षा हेतु आगाह कराती है, जिसके द्वारा हम जीवन और आशा के रक्षक बनते हैं। हम इस बात पर विचार करें कि अपनी आने वाली पीढ़ी हेतु हम कैसा भविष्य छोड़ना चाहते हैं। हम जो अपने सामान्य निवास के रक्षक बनते, जीवन और आशा के रक्षक होते हैं। हम ईश्वर के द्वारा मिले उपहारों की सुरक्षा करते, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी उनका लाभ उठा सके। संत पापा ने विशेष रूप से आदिवासियों के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव प्रकट किए, जो इस कार्य को बखूबी कर रहे हैं। उन्होंने उन आंदोलनों, संघों, ख्याति प्राप्त समुदायों की भी याद की, जो अपनी सांस्कृतिक मूल्यों और प्राकृतिक सीमाओं की रक्षा हेतु समर्पित हैं। ये सामाजिक सच्चाइयां सदैव प्रशंसनीय नहीं होती और कई बार इनका विरोध किया जाता है, लेकिन सच्चाई यही है कि यह शांतिमय क्रांति सेवा की क्रांति है, संत पापा फ्रांसिस ने कहा।
E questo non bisogna delegare a alcuni. Questo è compito di ogni essere umano.
कोई हमें यह निर्देशित न करे कि मानव के रूप में हमारा उत्तरदायित्व क्या है। हम में से हर कोई सामान्य निवास का रक्षक बने, जिसके द्वारा ईश्वर की स्तुति होती है, जिसके फलस्वरूप हम उनकी सृष्टि पर चिंतन करते और उनकी रक्षा करते हैं।
In nomine Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum, in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
मैं चलती सागर की लहरों के संग, कल कल सी करती झरनों के संग, नदियों के संग,
बहती शीतल पवन के संग,
सृष्टि के संग संग गाऊंगा तेरी महिमा मैं गाऊंगा,
सृष्टि के संग संग
रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन के संत दमासो प्रांगण में बुधवारी आम दर्शन के दौरान इटली वासियों का अभिवादन किया और कोमो के पुरोहित डॉन रोबर्टो मालगेसिनी की हत्या के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए एवं हत्यारे के लिए भी प्रार्थना की। पुरोहित की हत्या विदेशी मूल के एक बेघर व्यक्ति ने की जो मानसिक रूप से बीमार है। संत पापा ने कहा, मैं डॉन रोबर्टो मालगेसिनी के परिवार के सदस्यों और कोमो समुदाय के दर्द और प्रार्थना में शामिल होता हूं और जैसा कि उनके धर्माध्यक्ष ने कहा, मैं उनकी गवाही के लिए ईश्वर की स्तुति करता हूं, अर्थात शहादत के लिए, गरीबों के प्रति उदारता की इस गवाही के लिए। आइए हम पुरोहित रोबर्टो के लिए और सभी पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए मौन प्रार्थना करें जो जरूरतमंद और समाज द्वारा अस्वीकृत लोगों के बीच काम करते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस और वहां उपस्थित विश्वासियों ने कुछ देर मौन रहकर उनके लिए प्रार्थना की। डॉन रोबर्टो मालगेसिनी की मृत्यु की खबर सुनकर कोमो के धर्माध्यक्ष ओस्कर कैंटोनी ने गहरा दुख व्यक्त किया, साथ ही डॉन रोबर्टो के लिए गर्व महसूस करते हुए कहा, डॉन रोबर्टो हमेशा गरीबों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहे थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट प्रेषित कर सभी देशों के लोगों को जलवायु की देखभाल हेतु प्रेरित किया। संदेश में उन्होंने लिखा, पृथ्वी के भविष्य के लिए जलवायु बहाली अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं सभी देशों को कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अधिक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय लक्ष्यों को अपनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। # सृष्टि का मौसम। इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 दिसंबर 1994 में की गई थी। इस दिन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना और इसके संरक्षण के लिए समाधान ढूंढना है। शांति के लिए ज्ञान वाटिकन प्रकाशन भवन की एक नई इतालवी पुस्तक का अनुवाद है। पुस्तक की प्रस्तावना में संत पापा फ्रांसिस ने युद्ध और हिंसा के बिना दुनिया के निर्माण के लिए कलीसिया और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया है। आज के समाज में जलवायु परिवर्तन, युद्ध और हिंसा से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए युवा पीढ़ी में निवेश करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। उक्त बात संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन प्रकाशन भवन द्वारा छपी पेर उन सपेरे देल्ला पाचे, शांति के ज्ञान के लिए नामक इतालवी पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा है। पोंटिफिकल थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट सेंट जॉन पॉल सेकेंड के थियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के वाइस डीन और ऑर्डिनरी के गिल्फ्रेडो मोरेंगो द्वारा संपादित 124 पृष्ठ वाली किताब भविष्य के लिए कुछ ठोस विचारों को प्रदान करती है। 2018 में पोंटिफिकल लातेरन यूनिवर्सिटी में शांति विज्ञान के अध्ययन का एक चक्र स्थापित करने के अपने फैसले को याद करते हुए संत पापा कहते हैं कि इसका लक्ष्य एक विशिष्ट आकृति की रूपरेखा जैसे शांति निर्माता को परिभाषित करने में मदद करना है। संत पापा लिखते हैं, कलीसिया शांति, सद्भाव, पर्यावरण, जीवन और मानव एवं नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए संबंधित समस्याओं का समाधान के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने के लिए बुलाई गई है। इस मार्ग में विश्वविद्यालय की एक केंद्रीय भूमिका है, जो एकात्म मानववाद के प्रतीकात्मक स्थान के रूप में है, जिसे लगातार नए सिरे से और समृद्ध बनाने की आवश्यकता है। संत पापा फ्रांसिस का विश्वास है कि मानव विज्ञान के योगदान से पोषित ये शोध मार्ग शांति के ज्ञान के विकास को बढ़ावा देने में सक्षम होगा, ताकि उत्कृष्ट शांति कार्यकर्ता बन सकें। संत पापा ने इस क्षेत्र में विशेषज्ञ होने का मतलब समझाते हुए लिखा कि एक अच्छे शांति दूत को दुनिया और इतिहास पर एक परिपक्व नजर रखने में सक्षम होना चाहिए, जो हमेशा दृढ़ और संक्षिप्त रूप से लागू प्रस्तावों का साथ नहीं दे सकता। यह वास्तव में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परे जाने का मामला है, जो पूरी तरह से वास्तविकता को तटस्थ और अवैयक्तिक रूप से गले लगाने का दावा करता है। उधर पापुआ न्यू गिनी आज अपना 45वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पापुआ न्यू गिनी और सोलोमोन द्वीप के धर्माध्यक्षों ने एक संदेश जारी किया है, जिसमें प्राधिकरण से उन लोगों से अधिक प्रतिबद्धता का आग्रह किया गया है जो आजादी के 45 साल बाद भी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस अवसर पर पापुआ न्यू गिनी और सोलोमोन द्वीप समूह के धर्माध्यक्ष सम्मेलन के महासचिव फादर जॉर्जियो लिसिनी ने लिखा कि पापुआ न्यू गिनी की आत्मनिर्णय में महारत हासिल करने की यात्रा 16 सितंबर 1975 को शुरू हुई, लेकिन सार्वभौमिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, लिंग और घरेलू हिंसा की समाप्ति, व्यक्तिगत ईमानदारी, सभी के लिए समृद्धि, विकास और आवश्यक बुनियादी ढांचों के लिए संघर्ष अभी भी जारी है। फादर लिसिनी ने कहा कि लोग ग्रामीण जीवन की सादगी से खुश हैं, लेकिन उन्होंने अफसोस जताया कि आदिवासी झगड़े और पारिवारिक संघर्षों ने लोगों की बढ़ती संख्या को उनके मूल स्थान और उनकी पैतृक भूमि से बाहर धकेल दिया। लोग शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, परंतु वहां भी रोजगार के अवसर दुर्लभ हैं। उन्होंने नोट किया कि कोविड-19 महामारी के बीच वे इस साल स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मौत, बीमारी, स्वास्थ्य प्रणाली पर तनाव, नौकरियों को खोने की चिंता इत्यादि वायरस का सबसे अधिक दिखाई देने वाला प्रभाव है, जिसने वर्ष की शुरुआत में मानव जाति पर हमला किया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।